उपस्थित वैष्णव वैष्णी सज्जन महोदय आयोजन करता हूं सबको जथा के गुरु के अभिवादन इसके पश्चात में कुछ भागवती कथा आरंभ ऐसा संसार में कोई नहीं है जो सुख नहीं चाहता। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी से यह कहा कि संसार में सभी लोग सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता, किंतु दुख जबरदस्ती सिर पर चढ़कर उगा लेता है। ऐसा कौन मनुष्य जिसको बुढ़ापा न घर ले, ऐसा कौन मनुष्य नहीं है जो मृत्यु के रूप में पतित न हो, किंतु सुख सभी चाहे। क्यों? गीता भागवत और हमारे वेद उपनिषद शास्त्र सब कहते हैं कि हम उसके अंश ममई वांसो जीवलोके शरीर नहीं, शरीर नहीं हम है, आत्मा अर्थात मैं निकल जाने के बाद में शरीर चढ़ बन जाता है, या फिर हार्ड रक्त मांस टट्टी पेशाब इत्यादि के फैली है, किंतु भगवान की भी चित्र माया इसमें स्वयं भी रहते हैं और अपने अंश जीवात्मा को भी रखते हैं। जो लोग भगवान को भूल जाते हैं उनके लिए ये संसार एक कारागार है, कोई भी सुखी नहीं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रेसिडेंट हो, प्रधानमंत्री हो या कोई भी, सभी सुख चाहते हैं, क्योंकि वो परब्रह्म सुख स्वरूप है। हमारे शास्त्रों में कहा गया सुखं मे या दुखं मे मा भूत आनंदम ब्रह्म रसो वैष, हमें सुख हो, दुख कभी न हो, क्योंकि ब्रह्म ही सुख स्वरूप है, इसलिए कोई दुख नहीं चाहता, सुख चाहता, क्योंकि सुख की हमें संतान है। इसलिए उपनिषद में कहा गया आनंदम ब्रह्म, सबका नियंता, सबका सृष्टा, समस्त अवतारों का अवतारी स्वयं भगवान कृष्ण आनंद स्वरूप है, वही रस स्वरूप है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही यह बताया गया निगम फल स्वतो गलितम फलम सुखम खाद अमृत तपस्या श्रीमद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका प्रारंभ होता है। वेद शास्त्रों का यह गलित फल सक स्वरूप है जिसको सन रसी और फल के निष्कास पालन करते हैं। इसलिए कहा गया रसो वैश कृष्ण रस स्वरूप, इसलिए हम सुख चाहते हैं क्योंकि हमारा ये स्वरूप प्राधान है। किंतु सृष्टि से अनादि से हम लोग सुख चाहते हुए भी सुखी नहीं है। कभी ब्रह्मांड कम हो सकते हैं, कभी इंद्र इत्यादि होते हैं, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी, एक पतंग गधे घोड़े के रूप में आए अपने कर्मों के फल और फिर चले जाए। किंतु शास्त्रकारों ने बताया है बहुत ही सहज मार्ग है उस आनंद को कृष्ण को पाने के लिए, बहुत ही सरल मार्ग वह है भक्ति। समस्त शास्त्रों का वेदांत इत्यादि का भी ये मूल लक्ष्य है वो रस स्वरूप जो कृष्ण है उनकी सेवा की प्राप्ति। कृष्ण जैसा दयालु कौन होगा जो उतना कंस की अनुचरी स्तनों में विष लगा करके कृष्ण को मारने के लिए आई, किंतु वाले कृष्ण कंगवा दयालु शरण बने। कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन दयालु है जिनकी शरण में मैं आऊं। इसलिए हम लोगों का यह मनुष्य जीवन किसी में सार्थक और सार्थकता है किसी प्रकार से भी जीवन निर्वाह करते हुए अपने भौतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए परब्रह्म की खोज करें। आत्मा मैं क्या हूं इसका अनुसंधान करें, जो ऐसे ही संत है। मैं तो कोई संत नहीं, संत बनने की इच्छा है, संत नहीं, किंतु हमारे हृदय की आकांक्षा है कभी मैं संत बन जाऊं। तो संतों के चरणों में कोई उपस्थित हो, उनके सानिध्य में कुछ हरि कथा सुने और फिर कृष्ण की लीलाओं में रुचि हो और उन्हीं लीलाओं का अनुरूप भगवान के नाम में श्रद्धा हो, तो बस दिन भर में या जीवन भर में एक बार भी कृष्ण नाम मुख से निकल गया वो भाव सागर को मानो तर ही गया। सारा संसार झूठा हो सकता है किंतु शास्त्र जो भगवत स्वरूप है वो कभी भी झूठे नहीं हो सकते, इसलिए इस पर वाणी पर भरोसा करना ही होगा, विश्वास करना होगा कि भगवान के नाम से अजामिल जैसे लोग पापी एक बार नाम अपने बेटे का नाम रखा भाव सागर से पार हो गए। इसी तरह से सारे इतिहास हमारे भरे पड़े हैं वैदिक हमारे शास्त्र सब। एक समय की बात है कलयुग, कृष्ण के 230 वर्ष अप्रकट होने के बाद में कलयुग ने परीक्षित महाराज जी के राजत्व काल में प्रवेश किया। उसकी भयावह स्थिति देखकर हमारे भारतवर्ष के सारे ऋषि लोग नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे एकत्रित हुए और चर्चा कर रहे थे। स्त्रियां अपना धर्म नहीं रख सकेंगी, अधिकांश व्यभिचारिणी हो जाएंगी, दिन में 10 बार अपने पति का तलाक दे ली, पुरुष लोग भी कामी हो जाएंगे, तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट हो जाएगा, जमन हमारे कृष्ण लीला की स्थली अयोध्या काशी मथुरा इत्यादि उसको दूषित करें, लोगों को भ्रांत बनाने की चेष्टा करें, लोग अपना धर्म पूरा नहीं कर सकेंगे। बहुत से कथा वाचक होंगे जो कि अपने धन के लोग सिर्फ भगवान की कथाओं को कहते हैं, लोगों का ये दुख देख करके उनको भगवान के चरणों में ले जाने के लिए, वो भक्ति के लिए वो अपना पाठ प्रवचन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अब तो विधिवत वृंदावन में भी खुल गए हैं जहां पर भागवत सुनाना, जिनका निर्वाह करने का ये सब स्कूल और टीचिंग हो गया, इसलिए कथा का सार भी चला गया। विशेष करके कलयुग में जितने जो काल बजाएंगे मसाला इत्यादि देकर के भगवान की कथाओं को दूषित कर देंगे, शुद्ध हरि कथा नहीं कहेंगे, जिससे कि वैराग्य हो जाए। भगवान के चरणों में विशेष रूप से अनुराग और संसार के प्रति विगत राग, ऐसी कथा नहीं सुनेंगे। लोगों को लुभाने वाली कथा का करके पैसे के लोग से वो करें, इसलिए कथा का भी सार चला है। तीर्थों में भी ऐसे ही अधिकांश वृंदावन में जाइए, महल पर महल बन रहे हैं, पुराने वृंदावन समाप्त हो गए, कुंज कहाँ गए। इस तरह से गोवर्धन भी अट्टालिकाएं बन रही हैं और वो पुराना भाव धीरे धीरे नष्ट हो जा रहा है। विदेशों में यह सुन करके उनको दुख होता है, जहां जाते हैं कहते हैं कि भारत सबसे ऊंचा नंबर वन है किस विषय में, भ्रष्ट घूसखोरी में। नीचे से ऊपर का सारा क्रम घूसखोरी से बढ़ गया, इसलिए इसकी उन्नति नहीं होती, कुछ लोग कर नहीं सकते। ये कलयुग का प्रभाव, काफी कलयुग का ये महान गुण है। बड़ा सा भगवान का नाम का कीर्तन कर दिया जाए, भगवान की कथाएं किसी के मुख से निकल जाए, भगवान का नाम निकल जाए, अन्यास ही सर्व साधनों से संपन्न सतयुग त्रेता और द्वापर का कोई भी साधन इसकी क्षमता नहीं कर सकता। हरे नाम हरे नाम हरे नाम हलो नास्ते व नास्ते व नास्ते पति। कलयुग का यही एक महान गुण, एक बार भी नाम निकल गया, जैसा भी पापी तापी कोई व्यक्ति हो उसका लोक पर लोक सुधर जाता है। संसार में हम आए हैं धन कमाना, ऊंचा पोजीशन पाना, ये जीवन की सफलता का निशानी नहीं, ये तनिक भी सुख नहीं दे सकते। किंतु भगवान नाम इतना शक्तिशाली है कि कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति इस नाम में भर दी है, इसलिए कृष्ण से भी बड़ा महत्वशाली उनका नाम है। भगवान का दर्शन असंभव है, किंतु भगवान का नाम सबके लिए सुलभ है। अनजान में हेला पूर्वक और हेला से अपीति पूर्वक प्रीति पूर्वक जैसे भी भगवान का ही मन नाम निकल जाए इसका कल्याण। यही हमारी वैदिक संस्कृति, यही भारतीय संस्कृति है, यही भागवत संस्कृति है। ऋषि लोग परस्पर अब बातचीत कर रहे हैं, ये भयंकर कलयुग आ रहा है, धर्म कर्म रखना बड़ा सारी कठिन हो जाए, क्या किया जाए। उस समय 60,000 ऋषि लोग थे वहां, और बाई चांस सुखदेव गोस्वामी के शिष्य सुत गोस्वामी जी वहां पर उपस्थित हुए, उनका आदर करके व्यासासन के ऊपर में उनको बैठाया और बैठा करके उनके चरण पखारे और उनसे पूछा, भयंकर कलयुग आ रहा है, आप सब शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, आपने अपने गुरु जी की सेवा की है और उनसे बहुत निरंतर श्रवण किया है, इसलिए आप बतलाइए कि हमारा कल्याण आत्मा का कल्याण कैसे। इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं, प्रायेण अल्प आयुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंद आसुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपत्ता। कलयुग में आयु बहुत कम है, पहले लाखों वर्ष की आयु होती थी सतयुग में, थोड़ी कम हो गई त्रेता में, द्वापर तक में भी 4,000, 5,000, 10,000 वर्षों की उम्र वाले व्यास इत्यादि सुखदेव गोस्वामी जो अजर मर गए उसमें लंबी आयु होते थे, पुरुष भी लंबे, स्त्रियां भी लंबी चौड़ी और वृक्षवती होती थी। धीरे धीरे काल का प्रभाव ऐसा आया, हवा दूषित हो गई, पानी दूषित हो गया, दूध घी भी दूषित हो गए, अन्न भी दूषित होने लगे, स्मृति शक्ति भी नष्ट होने लगी। इसलिए कहते हैं कली के जो रहने वाले व्यक्ति लोग हैं वो अल्प उनकी उम्र होती है, मंदा उनकी बुद्धि भी मंद है, सुमंद मत हो, केवल मंद नहीं वो सोच नहीं कर सकते कि हमारा कल्याण कैसे होगा, ये बुद्धि नहीं रही, हमारा कल्याण कैसे होगा, हम कैसे सुखी रह सकते हैं, और मंद भाग्य, अच्छा काम करने पर भी उनका भाग्य बहुत ही छोटा होता है, करते हैं सुख के लिए हो जाता है तो पद होता है, और तरह तरह की समस्याएं हैं, एंडलेस चेन ऑफ बर्थ एंड डेथ भरा पड़ा है। इसलिए आप बतलाइए, अतः साधो अत्र जत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणः सत्तधाना जेनात्मा संप्रसीदति। इसलिए हे महात्मन, हे साधु, आप कृपा करके समस्त शास्त्रों का सार सहज रूप में बोध गम्य भाषा में हमें बतलाइए कि आत्मा कैसे प्रसन्न, मैं प्रसन्न कैसे हूंगा, सभी लोग प्रसन्न कैसे होंगे, ये नहीं पूछा। जय आत्मा मतलब क्या? यदि आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो उसी दिन से सड़ना गलना आरंभ हो जाएगा। आत्मा माने संस्कृत शब्द है आत्मन, आत्मन माने मैं, शरीर मैं नहीं हूं, ये पहले स्थिर हो, कथा होने के पहले ही आप सभी लोग समझिए, ये मेरा ही केवल विचार नहीं, हमारी गुरु परंपरा ब्रह्मा से लेकर के सुखदेव व्यास से लेकर अब तक के गुरु परंपराओं का यही, हम शरीर नहीं, अपने भगवान से विच्युति के कारण हम इस संसार के आवागमन में नित्य काल से अनादि काल से फंसे हुए, दुखी दुख होकर कभी भी सुख से तृप्ति नहीं और चिदानंद सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आप यह बतलाइए कि हमारी आत्मा कैसे प्रसन्न होगी। देखिए भाषा में मन रहता है, यहां पर कहा हमारी आत्मा, हमारी एक लग गया ना, ये स्थूल शरीर का बोधक है, किंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा का मन, इस जगत की कोई भाषा भी शुद्ध नहीं हो सकती, उसके भावों को शुद्ध करके ग्रहण करना। इसलिए आत्मा कैसे, आत्मा माने मैं कैसे सुखी हो सकता हूं, इसके लिए प्रश्न पूछा, और उसके उत्तर में हमारे सुखदेव गोस्वामी अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। सुखदेव गोस्वामी वो सर्वत कल्याणी गुरु है, जन्म से ही घर बार को छोड़ करके माया ममता कृष्ण में अधिक अनुरक्त होकर और विषयों से विरक्त होकर, अभी संस्कार नहीं हुआ जन्म का, भी संस्कार भी नहीं हुआ, अभी नाड़ी भी नहीं छेदन हुआ, स्नान भी नहीं किया और वन की तरफ नहीं चले, और उस समय में उनके पिताजी हा पुत्र कहते हुए जंगल की तरफ उनके पीछे भगे, हाथ पुत्र किया तो वन से आवाज आई प्रतिध्वनि, मानो पेड़ों ने उत्तर दिया, अरे पुत्र कौन किसका माता पिता, कौन भाई, कृष्ण ही एकमात्र भाई बंधु पति सर्वस्व वही तमेव माता जो पिता। फिर व्यक्ति एक भगवान के अवतार और पुत्र के मोह में पुत्र के पीछे डोल रहे हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि एक ऐसा योग्य लड़का जो जन्म से ही संसार से विरक्त है वही भगवान की कथा के सुनने योग्य है। जिसको संसार से विरक्ति नहीं हुई है, फलां ऐसी अमृतमयी सुधा का पान करने के लिए युक्त कैसे हो। जब ये भागवत कथा आरंभ हुई, सुखदेव परीक्षित जी को कहने लगे, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए, जा परीक्षित को ये पिला दीजिए अमर हो जाए और वो कथा हमें दीजिए। अरे देवगुरु, देवताओं को समझते नहीं हो, वो अमृत पाकर के आदमी पागल हो जाता है विषयों में, और ये अमृत है जो भगवान तक पहुंचा करके उनकी प्रेम माधुरी का आस्वादन करा देता है, बस उनको भगा दिया, ऐसा ये अमृत है। तो प्रणाम करके अपने गुरु को फिर व्यास जी ने छल बलकल से बहनों के द्वारा उनको फिर से बुला करके उनको ये श्रीमद् भागवत सुनाया। ये कैसा भागवत सुनाया? व्यास जी ने वेदों का विभाग किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास। वो जमुना के द्वीप में पैदा हुए थे पराशर ऋषि, इसलिए इसका नाम हुआ वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन पिता भी वैसे ही, और ये जन्म से ही भगवान के अवतार होने के कारण सभी कुछ जानते हैं। वेदों का विभाग किया, वेद अक्षरों में नहीं था, अक्षरात्मक रूप दिया। तत्पश्चात उन्होंने पुराणों को प्रकाश किया, उपपुराणों को, शाखा पुराणों को। इसके बाद में महाभारत लिखा, स्त्री पुरुष सबके लिए सुलभ, हमारे वर्ण जो कहे गए हैं अंतर उन सब लोगों के। और अंत में प्रसन्नता नहीं ही तमसा नदी के किनारे बैठे हुए थे, कितने गुरु नारद दिया है, अरे तुम देखते हैं कि तुम्हारा क्षोभ हो रहा, तुम किसी चीज की चिंता कर रहे हो, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न नहीं है, क्यों? जब गुरु जी आई तो नहीं मैं जानता, रोगा निर्णय तो वैद्य करता है, इसलिए आप कृपा करके हमारा रोग निर्णय कीजिए। काजी ये तो सहज ही निर्णय, तुमने धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जितनी बातें वेदांत में पुराणों में और इधर उधर जो वर्णन किया है, कृष्ण की लीला कथाओं को वर्णन किया, आपने स्पष्ट करके ये नहीं कहा कि समस्त अवतारों का मूल अवतारी कौन है, रसमय कौन है, आनंदमय ब्रह्म वो कौन है, सबका अनादि कौन है, आपने बतलाया नहीं। और आपने ये नहीं बतलाया वो परब्रह्म ब्रज में आकर के जो सुधा मैया से डर करके और उतार बिल बिलाता है, ये लिखा नहीं। अरे वो ब्रह्मा जो ब्रह्मा जी का के मन में समाधि भी उसके चरण कमल नहीं आते, और वो ब्रह्मा अपने सखाओं के द्वारा पराजित होकर के उनके चरण की वंदना करता है, ऐसा तो मैंने नहीं लिखा। आपने लिखा कि वो उनका जूठा खाता है, वो बालकों का जूठा खाता है। नंद जी पहले अपने खाकर के उनको खिला करके अपने खाकर फिर खिलाते हैं कृष्ण बल देव। आपने ये लिखा ये योगोपियां थी उनकी परिगत, उनके चरणों में झुकते हैं, अपनी बंसी भी दे करके अपना आत्मसमर्पण करते हैं जी गोपियों के चरणों। आपने लिखा और कहते हैं क्या, न पारे हम निरवत्त संतो, मैं देवताओं जैसे करोड़ों वर्ष की आयु पा करके भी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। गोपियों, माता पिता भाई धर्म गुरुजन इन सबको जलांजलि देकर तुम हमारे चरणों में आई, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं यशोदा मैया नंद बाबा को छोड़ नहीं सकता, हमारे आधुनिक भी जितने भक्त हैं उनको भी कैसे छोड़ सकता हूं, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है ये जथान माम प्रपंचे काम, जैसा मेरा भजन करता है। कि इस जगत में भी जो कुछ थोड़ा सा भी करता है उसके लिए वो थोड़ा करते हैं, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता। इसलिए तुम अपने आप हमारे प्रति सदैव होकर के यदि तुम चाहोगे तो हमारा मैं पूर्ण हो सकता हूं अन्यथा। इस प्रकार से आपने लिखा नहीं, कभी धर्म अर्थ काम मोक्ष से काम नहीं बनती, काम नहीं बनती। इसलिए आप भक्ति योग का अर्थ, भक्ति योग माने क्या, आत्मसमर्पण सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मां शुचः। शरणापन्न होना भगवान के चरणों में, पहले अपने गुरु के चरणों में शरणापन्न हो भाई। भगवत भजन की रीत, बैकबोन अपनी भक्ति रीत, ये क्या है, गुरु के चरणों में निष्ठा। प्रतिदिन जब भगवान का नाम स्मरण करते हैं उसके पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, जब गुरु ही नहीं है तो किसको प्रणाम करेंगे। कृष्ण के प्रणाम करने से नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण आकर के तुम्हारा पथ प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसलिए इन्होंने श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में सुख गोस्वामी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, सुखदेव गोस्वामी ने अपने गुरु पिता को प्रणाम किया, नारद जी ब्रह्मा जी को प्रणाम। इस तरह से ये गुरु परंपरा है, गुरु नहीं भक्ति नहीं सिद्धि सीधा। साधारण एक हो सकती है किंतु शुद्ध जिसको भक्ति कहते हैं, जिसके द्वारा भगवान का प्रेम मिलता है, विशेष करके ब्रज प्रेम जिसका हम आगे वर्णन करेंगे, ये संभव, ये सभी संभव। इसलिए उनको प्रणाम करके गुरु को अब तक कहने लगे, क्योंकि आप सर्वानुकर्ज्ञानी हैं, हमारे अंदर में जी हैं, गुरु कृष्ण को छोड़कर कैद नहीं रख सकता, इसलिए हमारे आत्मा के अंदर भी गुरु जरूर है कृष्ण के साथ में उनकी सेवा करने के लिए। इसलिए उनको प्रणाम करके ये कहने लगे, सबई पुंसाम परो धर्म जतो भक्ति रघुपतये अहेतुक्य अव्यवहिता जयात्मा संप्रसिद्ध। प्रश्न क्या था, हमारी आत्मा कैसे प्रसन्न हो, विशेष करके कल और उत्तर दे रहे सबई पुंसाम परो धर्म, मनुष्य मात्र के लिए, सबई पुंसाम निश्चित रूप में समस्त पुरुषों के लिए, जीवात्माओं के लिए, प्राणी के लिए, चाहे वो पेड़ वृक्ष किसी के पर्वत के रूप में हो, देवता के रूप में, मनुष्य के रूप में, समस्त प्राणियों का यही परम धर्म है। क्या परम धर्म है, और जगत में जो धर्म है वो धर्म नहीं, स्वाभाविक धर्म नहीं है, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, तरह तरह के धर्म, सामाजिक धर्म, देश के प्रति धर्म, ये भाई धर्म नहीं है, ये तो सुख शांति पूर्वक जगत में एक रहने की सामाजिक रीति है। धर्म एक ही है, वो विश्व का सर्वज्ञानी, वो धर्म है। वो धर्म क्या है, प्रेम, और प्रेम की पुतली, प्रेम की ये मूर्तिमान स्वरूप ये कृष्ण है। कृष्ण ही कभी राम के रूप में आते हैं, कृष्ण ही कभी निशिंह इत्यादि के रूप में, जब जैसी जगत की स्थिति होती है उसलिए वो कृष्ण ही। शंकर जी को, गणेश जी को, दुर्गा जी को गुरु मानो, हनुमान जी को गुरु मानो, ये भगवत तत्व नहीं है, भगवान के सेवक हैं, ऐसा मान करके यदि भगवान का भजन किया जाए तो इसकी सुख और शांति। इसलिए प्राणी मात्र के यही परम धर्म है, अद्भुत कर्म इंद्रियों के द्वारा देखे नहीं जाते, आंख से नहीं देखे जाते, आंख से तो अपनी आत्मा भी नहीं देख सकते, दूसरों की आत्मा को भी नहीं देखते, इन्हें ये परम धर्म नहीं है। जो अधोक्षज पुरुष है, अभी तो हवा है देख ही नहीं पा रहे, तो परम तत्व तो बात ही अलग है, उसके हवा के हिलोरों से हम समझते हैं कि हवा चल, सूर्य की धूप कार्य रूप है कि हम व्यक्त नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं जयात्मा संप्रसिद्ध, वो परम पुरुष जिससे प्रसन्न हो सके वो भगवान की अधोक्षक जो भक्ति है नहीं अंतर्यत अवच्छिन्न गति से उस भगवान के प्रति हमारा मन लग जाए, हमारी गति हो जाए, हमारी भक्ति हो, जो अहति हो किसी भी संसारी कामना बाटला के लिए नहीं, जैसे ध्रुव की भक्ति तैसी थी, राज्य के लिए भगवान का भजन किया, इसलिए यह भक्ति की ओर नहीं है, सकाम भक्ति निर्गुणा भक्ति नहीं हुई। इसलिए ऐसी भक्ति निरंतर रहने वाली गुरु के अनुगत्य में, शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में जल्दी भगवान के प्रति ऐसी अहसी भक्ति हो, ये जीव मात्र के लिए जन्म पाता है और सब धर्म समाज श्रृंखला के लिए बने, ये परस्पर विपरीत है, किंतु उस परम पुरुष के प्रति जो भक्ति अर्थात प्रेम है यही परम है। थोड़ा सा
महाराज जी को Hey, 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 hey हमें कृष्णदास जी ने भगवान का दर्शन कराते हुए गुरु जी के चरणों में अभिवादन करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए भगवान का भी दर्शन कराया। और अब हमारे देश की परंपरागत भजन गायक और गायिका हरिओम शरण जी और नंदी शरण जी से नंदिनी जी हमारे बीच में है। भगवान के चरणों की कुछ माला महाराज जी को भेज करके महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेगी। भगवान करे उनके परिवार में स्वास्थ्य और समृद्धि की याचना और कामना के साथ महाराज जी को ये उनकी भेंट उनकी माला समर्पित उनके चरणों में और महाराज जी ने आशीर्वाद दिया।
Thank you. Thank you. Thank you.
भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी बतला रहे हैं वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोग आसु वैराग्यम ज्ञान जला है। कृष्ण जो सबके हृदय में बसते हैं, जन जन के हृदय में निवास करते, उस भगवान के प्रति यदि भक्ति योग यदि अनुष्ठित हो, भक्ति योग यदि किया जाए तो उसके उसका मूल फल है भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम। और उसके गौण दो लक्षण है जिसको तटस्थ लक्षण कहते हैं, वो है अपने आप कृष्ण के चरणों में परम वही अनुराग होगा और वैराग्य हो जाएगा विषयों से, और इतने प्रकार के तत्व ज्ञान है अपने आप हृदय में जल उठेगा। जिसने हरि कथा सुना, भगवान की भक्ति की और उसको वैराग्य नहीं हुआ विषयों से और तत्व ज्ञान नहीं हुआ, वो हरि कथा उसको स्पर्श नहीं किया, उसका नाम उसको स्पर्श नहीं, कोई खाए और पेट न भरे ये संभव नहीं है। असंभव है यदि उसको भूख लग गया है, खा रहे और भूख खाता हुआ चलता जाए, अन्यथा खाएगा पेट भरेगा। ग्रास प्रति ग्रास के साथ में भागवत में ऐसा प्रति ग्रास के साथ साथ में संजीवनी शक्ति आ जाती है और विष और खाने के प्रति स्पृहा चली जाती है और हृदय खुश हो जाए। भगवान का भजन कोई करे, उसकी आत्मा प्रसन्न न हो यह असंभव। सूर्य उदित हो गया, प्रकाश नहीं आया, यह असंभव। ऐसे ही भगवान की कथा जो सुना, भगवान का भजन किया और भूखों से पीट आता है, यह संभव नहीं है, कभी संभव। उसका यही लक्षण है, उसकी आत्मा प्रसन्न है और भगवान के विशेष प्रति अनुराग और ज्ञान और वैराग्य उसको जरूर मिला। और यदि नहीं हो रहा है, भगवान का भजन कर रहे हैं, जाचन भी कर रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, कथाएं सुन आ रहे हैं, वैराग्य नहीं। मैं मानता हूं जब आपकी है ये कुछ गड़बड़ी है, इसलिए वो कहते हैं कि जनत आसु जल्दी से जल्दी शीघ्र ही वैराग्य हो जाएगा और भगवान के प्रति अनुराग। और जितना तत्व ज्ञान, माया माया तत्व, जीव तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, रस तत्व, सब कुछ जगत को तारण करने वाला बन जाएगा। वो अपने तो तरेगा ही, विश्व को ही तारण करा दे। इसलिए कहते हैं धर्म स्वनिष्ठित, यदि हम भक्ति धर्म भक्ति योग का आश्रय लेते हैं और भगवान की लीला कथाओं में श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा। यदि रति नहीं है भगवान की लीला कथाओं, नाम कर रहा है, धर्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है, किंतु भगवान की इन लीला कथाओं में रुचि नहीं है तो वो सब बेकार है। कुछ दिन में तुम्हारा जो हरिनाम कर रहे हो, भगवान की जो कुछ कर रहे हो, वो भी कुछ दिनों के बाद में दुर्भगता से सब खत्म हो जाए। इसलिए ये भगवान की कथा ऐसी है, आत्मा से प्रसन्न होगी, विषय के प्रति अपने आप वैराग्य होगा और तत्व ज्ञान संपूर्ण तुम्हारे हृदय में। ये तो इसका लक्ष्य है। अब भक्ति योग, इसने कहा कि भक्ति योग है क्या, इसी को मैं अभी मैं व्यक्त करूंगा। जैसा कि हमारे चैतन्य महापुरुष स्वयं श्री कृष्ण श्री रूप गोस्वामी के हृदय में इन भक्ति का संचार किया, उन्होंने भक्ति का एक डिफिनेशन दिया है, परिभाषा उन्होंने दी है। उन्होंने परिभाषा किया है कि भक्ति किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, स्नेह किसको कहते हैं, निष्ठा किसको कहते हैं, रुचि किसको कहते हैं, सबका डिफिनेशन दिया है नीचे से ऊपर। वो भक्ति की डिफिनेशन दे भागवत में और शास्त्रों में लिखा है, भगवान में चित्त की अनुरक्ति का नाम ही भक्ति है। भगवान के चरणों में कंटिन्यूअस पल धारावत अविच्छिन्न गति से अनुराग हो जाए भक्ति है। कहां अनुराग। दूसरी बात, ये भक्ति निर्गुण है, जगत की कोई वस्तु नहीं है। भक्ति माने ही होता है प्रेम, और उसी को ये कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म जनामृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तमा। यदि अपने तन मन वचन और सारी इंद्रियों से किसी अनुभवी अनुरागी संत के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा हो, तन से मन से वचन से और इसके अतिरिक्त भावना से, जो मन के अतिरिक्त है उस भावना से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही केवल कृष्ण का भजन या सेवा हो, इसको भक्ति कहते। यह भक्ति दो प्रकार की है, और एक शुद्ध भक्ति और एक अशुद्ध भक्ति। यदि किसी सांसारिक कामना से भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन उनकी भक्ति की जाती है, श्रवण कीर्तन स्मरण जो भी हो, प्रसन्न करके ध्रुव की भांति राज्य के लिए करते हैं तो भक्ति कुछ गड़बड़ी होगी, वो शुद्ध भक्ति रहेगी। फिर से समझ लीजिए, भगवान का भजन करते हैं, नाम करते हैं, गुरुकर्ण भी किया, सब कुछ किया, किंतु भगवान को प्रसन्न करके हम जगत की कोई अभिलाषा को पूर्ण करना चाहते हैं तो भक्ति नहीं रही उसको। और दूसरी बात, यदि वो भक्ति भगवान की भक्ति कर रहे हैं और वो भक्ति ज्ञान और कर्म से भक्ति, ज्ञान कर्म योग तपस्या इत्यादि, यदि थक गई, थकने का तात्पर्य क्या है, कर्म के द्वारा कभी थक सकती है, ज्ञान के द्वारा, बिना कर्म किए भक्ति नहीं होगा, इससे भक्ति थकेगी। भक्ति स्वतंत्र है, अवलंबना आना, एक मुक्त से मुक्त व्यक्ति, कोई स्वयं व्यक्ति, महादुराचार्य जामिन जैसा भी दुराचारी जो बीच में भी पाप है ना, ऐसा भी प्रारंभ से ही भक्ति कर सकता है। कर्म में, सत्कर्म में और ज्ञान में उसका अधिकार नहीं है, किंतु भक्ति में अधिकार है, स्वरूप से ही उसका अधिकार है। इसलिए भक्ति कर्म के या सत्कर्म के द्वारा होती है, या ज्ञान जब होगा तब भक्ति होगी, ऐसा यदि किसी के मान्यता है तो वो भ्रम है। भक्ति किसी भी अवस्था में किसी अज्ञानी को दुराचारी को भी भक्ति हो सकती है, इसीलिए भक्ति स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष, जिसको हम शूद्र कहते हैं, शूद्र जाति से मत समझिए, भावों से शूद्र, शराब पीना, शरीर में आसक्त रहना, शोक करना शरीर के लिए, ये शूद्र है। और नहीं तो नारद जी किस जाति में हुए, वो भी तो शूद्र में आ जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी भी किस में आएंगे, रावण आया ब्राह्मणपुर में, किंतु उसको कहते हैं राक्षस। इसलिए अपने कर्मों के अनुसार ये सब चीज निरूपण किए गए। यदि जाति के हम सर्वस्व मान लें तो कृष्ण तो ग्वाला जाति में आए थे और राम क्षत्रिय तो उनको भूख लगाते हैं, जूठा करते हैं, उनका पूजा करते हैं, किस लिए करते हो, इसलिए चतुर्वर्णम वयाशिष्टम गुण कर्म विभाग, गुण और कर्म के अनुसार। इसलिए पैसों को ब्राह्मणों का भी गुण कहा जाता है। इसलिए हाँ, क्या बतला रहा था, अब इसको उदाहरण देकर के समझा, ध्रुव की भक्ति सकाम थी, कर्म से थकी, भगवान को प्रसन्न किया, किंतु उसने उसके लिए भगवान से मांग लिया वरदान राजा होने, पृथ्वी का राजा बने, और भगवान उनको प्रकट होकर के दर्शन दिया और दर्शन देकर 36,000 वर्ष तक निर्विघ्न ही भगवान का भक्ति गई, लोग भक्ति नहीं हुई, सकाम भक्ति हुई, इसलिए ये भक्ति। अभक्ति का हम दूसरा उदाहरण देते हैं, भगवान को सुख मिले, हमारे आराध्य जो कृष्ण हैं, गौवा चराते हैं, घर घर में मक्खन चुराते हैं, बंसी बजाते हैं, ग्वालिया का काम करते हैं, किंतु है कौन, है कौन, अखिल विश्व ब्रह्मांडों के रचयिता का भी वो रचयिता, किंतु मालूम पड़ता है छोटा सा ग्वालिया बंसी दिए हुए घूमता है, मक्खन चुराता है, मक्खन नहीं चुराता, लोगों का, लोगों का हृदय चुराता है, इसी के बाद यशोदा जी दधि मंथन कर रही है, हो 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त, कृष्ण भी स्वयं हुए हैं, आंखों में काजल है लगा रहा, बड़े बड़े लंबे काजल। कृष्ण को सुला करके यशोदा मैया दधि मंथन कर रहे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कृष्ण जिसका बेटा है इतना सुंदर है, उसकी मैया कितनी सुंदरी होगी। माता यदि मैया और पिता सुंदर न रहे तो बेटा नहीं हो सकता। अद्भुत सुंदर, कमर पतली, मस्तक छल चौड़ा, कानों में कुंडल है, रेशमी वस्त्र पहनी है, मानो उनकी सुंदरता उस कपड़े से छन छन करके आ रही है, और हाथों में रस्सी लगे हुए और दधि मंथन कर रही है, भाव में भी दूर होकर गोविंद दामो बंद कर कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर दधि मंथन कर रहे हैं। अपने आप बरबस कृष्ण की बाल्य लीलाएं उनके हृदय में आ रही है और आंखों से आंसू बह रहे हैं, तन्मय हो गई है। मानो दधि मंथन की जो ध्वनि है मृदंग का पिछला भाग धिक धिक और अगला भाग क्या कर रहा है तान, उनको धिक्कार है जो कृष्ण का भजन नहीं करते। इस प्रकार से समय होकर के डूबी युति कीर्तन कर रही थी। कृष्ण उठे, अब जग गए, भूख लगी, दूध दिए ये मैया का स्थान, मैया को है नहीं टोटोला, जो विश्व ब्रह्मांड को गेंद की भांति अपने अंगुलियों पर ले सकते हैं, जो गोवर्धन को 7 दिनों तो कनी अंगुली पर उठाए रहे, उनको भूख लगी और पलंग से नीचे नहीं उतर रहे, इतने अभी अबोध हैं, दुर्बल हैं, किसी तरह से पेट के बल से बड़ी मुश्किल से उतरे। और यशोदा मैया के तरफ में देख करके रोने लगे, जो से मैया आए दूध पिलाए, किंतु वो तो कीर्तन कर रही है और कृष्ण रहते कहाँ हैं, भक्तों के हृदय में नहीं, योगियों के हृदय में नहीं, जत्र भगवान के भक्त लोग यहाँ संकीर्तन करते हैं बस भगवान वहीं पर पहुंच जाते हैं, यशोदा जी कीर्तन कर रही है भाव को। अब वो जाने के लिए छटपट कर रहे, जब वहां पर पहुंचे दधि मंथन एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उनका अंचल पकड़ लिया। तो सोया नहीं कौन देखा, तो नंगा धड़ंगा उनका लाला, बस स्नेह से आंसू आने लगे और गोदी में बैठा लिया और दूध पिलाने लगे। यशोदा माँ के घर में एक नादू के कोटि कोटि क्षीर समुद्र भी भर जाए और कृष्ण की भूख कितनी, कृष्ण के पेट में सारा विष्णु ब्रह्मांड भी एक लोम कूप में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, उनका पेट कौन भरेगा, यशोदा मैया का दूध कम नहीं होगा और कृष्ण का की भूख भी दूर नहीं होगी। इसलिए एक भक्त जो दूध के रूप में है पास ही चूल्हे के ऊपर में रखा गया, वो उबल करके गिरने लगा आग में। मुझको तो मौका नहीं मिलेगा जो कृष्ण की सेवा कर सकूंगा, ये तो मैया का इतना दूध और कृष्ण की भूख के लिए अतः कैसे ये आदमी जलवर नहीं। भक्त ये सोचता है कृष्ण की सेवा नहीं कर सका तो इस जीवन की कोई आवश्यकता, प्रेम धन बिना व्यर्थ जड़ जीवन, यदि प्रेम नहीं कृष्ण का तो ये जीवन में रहने का हमें कोई लालसा नहीं है, मर जाना नहीं। दूध वहां पर बल रहा है, जो यशोदा मैया ने कृष्ण देखा ये दूध बल रहा है, कृष्ण को एक हाथ से पकड़ा कहा बैठो, जो पर ब्रह्म पूरी शक्ति लगा करके यशोदा मैया का स्थान नहीं छोड़ रहा है, और उसको एक हाथ से बिना परिश्रम ही लेकर के बैठा दिया। जो पूतना को 60,000 हाथियों के बल वाली पूतना को वो चाहती थी जब छोड़ दे, छुड़ा नहीं सकी। आज ये गोपी यशोदा मैया क्या कर रही है, उनको बैठ गया और किसी को बैठा दिया। कृष्ण रोने लग गए, अजी ये भक्ति है। अभी पहले श्लोक में भक्ति की परिभाषा के श्लोक में हमने कहा तन से, मन से, वचन से, भावनाओं से निरंतर भगवान को प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना ही भक्ति है। तो ये डिफिनेशन गड़बड़ हो जाए। तो यशोदा जी की भक्ति करा यदि कृष्ण को मारने के लिए लठिया उठाती है, उनको बांध देती है ओखल में, वो रोकते ही नहीं, ये भक्ति कैसे हुई? दूसरी तरफ कंस ने अक्रूर को ब्रज में भेजा, हमने कृष्ण को मारने के लिए उस नन्हे से बच्चे को मारने के लिए पूतना भेजी, किंतु खबर लेकर के कोई आई नहीं। अगासु बकासु पीनाभक्ति इत्यादि को भेजा, वो भी संवाद लेकर के नहीं आए। धेनुकासु मैंने गधे को भेजा, वो भी जो गया प्रेस से लौटा नहीं। इसलिए अच्छा है उन दोनों को छल से, बल से, कौशल से मथुरा के किले के बीच लाया जाए और हम सभी लोग मिल करके उसको मारे। आकाशवाणी हुई थी सातवा गर्भ तुम्हें मारेगा, आठवा गर्भ तुम्हें मारेगा हंस के। दैववाणी को सच मान कर माना, किंतु फिर मिथ्या करना चाहा, कैसे? देवकी को मार डालूंगा या कृष्ण को मार डालूंगा मैं बच्चे। सुना तो ये आधा विश्वास किया आधा नहीं किया, ये नास्तिकता है, इसी को नास्तिकता। तो यशोदा मैया को बांधती है और रोते हैं और चारों मस्तिष्क फिर गया कंस को दिखलाने के लिए। अभी आप चिंता ना कीजिए, आज वो बच करके नहीं जाएगा, वो दक्षिण प्रदेश के, दक्षिण देश के, भारत के मल्ल थे, मद्रास साइड के बड़े भारी मल्ल थे। और कृष्ण और बलदेव अभी दूध मुख थे, दूध का दांत भी अभी नहीं टूटा, अभी तो 10 वर्ष से पार किया है 11वें वर्ष। और उनको पकड़ लिया और कहने, यार ये तुम बच्चे थोड़े हो जो पुतना को मार सकता है, घास को मार सकता है और गोवर्धन को उठा सकता है, वो छोटा बच्चा है, आ जाओ आ जाओ। बस भीड़ गए कृष्ण भी और वो मारने की चेष्टा में लगे, मुष्टि का प्रहार करने लगे। आज कृष्ण को बड़ा आनंद हो रहा है, आज बहुत दोनों के बाद में फिर रस आस्वादन करने लगे। वो मारता है तो उनको फूल जैसा लगता है। ये प्रसन्न होना जो प्रसन्न किया, ये तो भगवत भक्ति होनी चाहिए, इसमें तो कृष्ण को सुख हो रहा है। पहले नहीं, यही तो समझना है, ये भक्ति नहीं है। ये कौन सा है? अनुकूल रूप में, अनुकूलेन कृष्णानुकूलनम, कृष्ण के सुख के लिए हो, कृष्ण के भला के लिए हो। यशोदा मैया कृष्ण को कारण भर्षण कर रही है, डरा धमका रही है, इसलिए कहीं बिगड़ न जाए चंचलवा, इसलिए। और वो कृष्ण को मारने के लिए, इसलिए ऐसी चेष्टा जिसमें कृष्ण को सुखी कर सके, ये भक्ति नहीं है। सुखी करना ही नहीं, आंतरिक उद्देश्य देखना चाहिए, जो अंतर का उद्देश्य क्या, भक्ति हृदय की भावना है। इसलिए यशोदा जी उनको बांध देती हैं, कृष्ण रोते ही हैं, यही भक्ति का चरम लक्ष्य। और चारों मुष्टिक जैसे, ये भक्ति नहीं। अब इसको और भी स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण दे रहा हूं, खूब ध्यान से सुनेंगे। कैकेयी ने 2 बार मांगा महाराज दशरथ, राम का भरती का राज्याभिषेक, भरत के लिए, राम के लिए 14 वर्ष बने, महाराज दशरथ आदेश नहीं देने पर भी, इच्छा नहीं रहने पर भी चुप मौन रहे। कैकेयी ने कहा कि हमने दो बार मांगा, इसके लिए ये बिलबला करके रो रहे हैं, तुम इनका सत्य पुत्र हो, तुम्हें इनका आदेश पालन करना चाहिए। राम उसी समय में राज्याभिषेक जिस समय होने को था, भैया लक्ष्मण और पत्नी सीता जी के साथ वन में चले। दशरथ हा राम और हा राम कह करके तीसरी बार नहीं बोले, अपने धाम में सिधार गए। भरत और सब तो नवनिहाल में थे। महाराज वशिष्ठ जी ने कौशल करके अपने दूत के द्वारा उनको बुलाया। अशुभ चारों तरफ में हो रहे थे, बिजली गरज रही, बिजली चमक रही थी, आकाश मानो रक्त की धारा हो रही है, गधे और ये कुत्ते सब रो रहे थे। और अयोध्या में जब आए, अगवानी के लिए आज कोई नहीं आया, अयोध्या मालूम होती है आज विधवा नगरी बन गई। उस समय में देखा आज मेरी अगवानी के लिए कोई नहीं आया, भैया राम तो आज आते, भैया कहाँ हैं? महाराज दशरथ तो मुझे लाड़ प्यार करते, तो वो क्यों नहीं आए? इतने में सामने देखा कि लोग सब हैं और उनके तरफ में अपेक्षा कर, उनकी उपेक्षा करके देख, आते हुए भी उसकी तरफ, भट की तरफ में कोई नहीं देखा, ऐसा क्यों हो गया? थोड़ी देर बाद मैया आई मंथरा के साथ में, बोली जे बेटे तुम्हारी जय हो, तुम ही यहाँ से अब राजा हो। जे क्या, पिताजी कहाँ गए? वो लोग सिधार गए, भैया राम पत्नी और लक्ष्मण के साथ में बन चले। क्यों? मैंने सब तुम्हारे लिए, राज्य के लिए मैंने किया था, आज तुम्हारा राज्याभिषेक, तुमने मांगा ऐसा बर, आज से तुम्हारा हमारा मैया और बेटे का संबंध सदा के लिए छूट गया, अब तुम मेरी मैया नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं जीवन भर के लिए। और फिर कौशल्या के चरण में जाकर के बच्चे जैसे रोने लगे, और फिर उनको सांत्वना देकर के अयोध्यापुर वासियों को, वशिष्ठ को, माताओं को सब लेकर के चित्रकूट पहुंचे। उस समय रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ में चित्रकूट। महाराज जनक को भी एक खबर लगी, महाराज जनक भी सुनैना इत्यादि के साथ वो भी चित्रकूट में। लक्ष्मण जी ने सुना कि चतुरंगिणी सेना के साथ में भरत आ रहा है, तो धनुष बाण लेकर के तैयार, आज भरत को मारूंगा, चतुरंगिणी सेना का विनाश कर दूंगा। राम ने कहा जब धैर्य से काम लो, कहीं पीछे पछताना ना पड़े। और इसके बाद में भरत जी वहां पर पहुंचे, उनके चरणों में गिर करके रोने लगे। तब लक्ष्मण जी को पता लगा कि नहीं, रामचंद्र ने बतलाया कि भरत इतनी भक्तिमान है हमारा, इतना मुझे प्यार करता है कि संसार में वो दूसरा कोई नहीं है, वो भक्ति का एक दूरी है, उदाहरण है, आज नहीं समझ रहे हो कल समझ। अब उनका भाव देख करके द्रवित हो गए और भरत जी से भी क्षमा मांगने लगे। रात में वहीं आए, माताएं ठहरी नीचे और चतुरंगिणी सेना भी नीचे ठहरी। रात का समय हुआ, भरत जी सबसे पहले कौशल्या मैया के पास गए, कल हम लोगों की सभा होगी और मैं जानता हूं कि राम तुम्हारे आदेश के, आपकी आज्ञा का जरूर पालन करेगा, कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए आप राम से मेरा निवेदन कर दीजिए कि वो लौट जाए। और राज्य उसी का है, बड़ा भाई राजा होता है, वो ग्रहण करे, इसी में सभी लोग से। और सिंधिया जी बोली बेटा मैं कैसे कर सकता, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, तो क्या मैं धर्म विरुद्ध कह रहा हूं? नहीं, तुम ठीक कह रहे हो अपनी तरफ, किंतु उसको भी मैं क्यों कहूं, कैसे कहूं कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, पिता का आदेश मान करके तो जा रहा है, मैं नहीं कर सकता। तो फिर तुम क्या चाहते हो, जब मैं मर जाऊं? नहीं मरना नहीं है, किंतु राम भी तो अपने सत्य पथ पर डिगा हुआ है, इसलिए उसको कैसे मैं कर सकती हूँ बेटे। अंत में गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए, गुरु जी आप हमारे पिता भी हैं गुरु भी हैं, पिताजी तो रहे नहीं, इसलिए आप एक बात कीजिए, आप राम से कह दीजिए अयोध्या में लौट जाए, उनका राज्याभिषेक के लिए हम लोग जितनी चीजें होती हैं लाए हैं, उनका राज्याभिषेक करके लौट आए। अरे बेटा ये मैं कैसे कहूँ, उन्होंने भी यही कहा तुम प्रेम की प्रतीक हो, बात ठीक है, किंतु राम भी तो ऐसा है, धर्म पथ पर है, सत्यवादी है, पता उसे कैसे कह दूं। हाँ एक बात है, यदि तुम उसके बदले में बन जाओ तो उसे मैं कह सकता हूं अजय तुम लौट। भरत जी आनंद से उछल पड़े, बोले अच्छा तो ठीक है मैं उनके बदले में बन जाऊंगा, हम और शत्रुघ्न दोनों भाई चले जाएंगे, वो दोनों भाई सीता जी के साथ में लौट। फिर कृष्ण जी ने कहा बात तो ठीक कहते हो, हमने कहा किंतु ये भी मानेगा नहीं, वो अपने धर्म का पक्का है और मैं कह नहीं सकता। फिर सुनैने जी के पास में गए, कल सभा होगी, हमारे पिता रह गए हैं जनक जी और गुरु जी हैं, पथ प्रदर्शक हैं और ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप उनसे कह दीजिए आपकी सीता राज महल में रहने वाली हो, वन जंगल में डोलेगी, आप उनसे समझा दीजिए यदि अपनी बेटी का कल्याण चाहते हैं तो राम को लौटा देने के लिए कहिए। अच्छा मैं अपने पति से निवेदन करूंगी। इसके बाद में दूसरे दिन सभा बैठी या तीसरे दिन, दूसरे दिन तो उन्होंने पिताजी को पिंड दान किया और तीसरे दिन विराट सभा बैठी, एक तरफ में अयोध्यावासी भरत और शत्रुघ्न माताएं बैठी, दूसरी तरफ में सीताराम लक्ष्मण बैठे और बीच में ऋषि महर्षि लोग वहां पर चित्रकूट के बैठे। जब सभा बैठ गई वशिष्ठ जी उठ करके बोले रघुकुल की नाव डूब रही है, कोई छेने वाला नहीं है, अब इस तरफ में ऐसे हवा से गवा डोल हो रही है, इसको खेने वाला तो महाराज जनक आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, इसलिए आप कोई निर्णय देकर के उसको बचा लीजिए। जनक ने कहा हमारी बात मानेंगे ये लोग, हर जी ने कहा मैं सब तरह से सहर्ष होकर के मानूंगा। राम का तरफ में देखे, राम ने कहा जरूर मैं मानूंगा, आपकी बात जो कह देंगे मैं मानूंगा। इसके बाद में उन्होंने कहा वशिष्ठ जी आप तो हमसे भी श्रेष्ठ ऋषि हैं, तो आप क्यों नहीं कहते, आप कोई निर्णय दीजिए, आपका निर्णय सभी लोग मानेंगे। उन्होंने कहा कि भाई इस समय मैं निरपेक्ष नहीं हूं, मैं रघुकुल के राजवंश का अन्न खाया है, इसलिए मैं तो यही भरत जैसा चाहता है वैसे ही चाहूंगा कि अयोध्या में लौट आए, इसलिए मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप निरपेक्ष होकर के अपना निर्णय दें कि इन दोनों को क्या करना है। महाराज जनक जी ये तो ब्रह्म योगी आप ही लोग जानते हैं, ब्रह्म की अनुभूति उनको है, संसार से अनासक्त हैं, सुखदेव गोस्वामी को भी ज्ञान देने वाले हैं, साधारण नहीं है, ऐसे योगी ब्रह्म योगी। उन्होंने अपने इष्ट देव को शंकर जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे आदेश मांगा, प्रेरणा मांगा और फिर बोलने लगे, बोले कि मेरा निर्णय ये है भरत की जीत है। सुनते ही भरत और जितनी अयोध्यावासी के माताएं सब उल्लसित हो गए। जनक जी ने कहा भरत की जीत हुई, प्रेम रीति नीति नहीं जानता, धर्म धर्म नहीं जानता, प्रेम नदिया की बहे उल्टी धार, उसमें रीति नीति ये सब बह जाता है। तो प्रेम का कृष्ण भरत का प्रेम राम के ऊपर इतना अगाध है और रीति नहीं रीति नहीं सबको अपने बीच में डुबा देता है, वह अथाह समुद्र है। किंतु एक बात और है, राम धर्म की ध्वजा है, राम धर्म की मूल है। चाहे वो डूब जाए प्रशांत महासागर में, एवरेस्ट डूब जाएगा 7 मील का, किंतु इधर उधर नहीं होगा। ऐसे भरत का प्रेम अथाह अनंत है, किंतु राम उसमें डूब जाएंगे, प्रेम में डूब तो जाएंगे किंतु अपने धर्म से एक दिन भी इधर उधर विचुत नहीं हो सकता, संभव नहीं है। किंतु फिर भी एक बात समझो, प्रेम की भी एक रीति है। वो रीति क्या है? सबको डुबा देती है, ठीक है, लेकिन जो प्रेमी व्यक्ति होता है उसके अपने इष्ट देव के प्रति कुछ भावना होती है। अपनी भावना में बहना ये साधकों का कर्तव्य नहीं है। तुम जैसे भक्त लोग, तुम देखो तुम्हारा इष्ट देव क्या चाहता है, समझिए इस विषय को। गुरु क्या चाहता है शिष्य से, सदगुरु सत शिष्य से क्या चाहता है, इसको देखो। चैतन्य महाप्रभु ने एक शब्द में बतलाया है रूप गोस्वामी के लिए, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा सतम। श्री रूप गोस्वामी के महाप्रभु जी के जितने अभीष्ट थे उसको क्या जगत में कृष्ण प्रेम क्या है, गोपी क्या है, राधा जी का प्रेम कृष्ण के प्रति क्या है, ब्रज किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, अपने पुस्तकों के माध्यम से उज्ज्वल निर्मल भक्ति स्वामी सिंधु और पुस्तकों के माध्यम से जगत को दान किया। गोपियों और कृष्ण में प्रेम था, गोपियों का कृष्ण के प्रति, कृष्ण का गोपियों के प्रति, किंतु कृष्ण का गोपियों के प्रति जितना और गोपियों के प्रति जितना प्रेम था उसका करोड़ गुणों प्रेम गोपियों का कृष्ण के प्रति था। प्रेम में पागल हो जाया करती थी, कृष्ण कभी पागल नहीं हुए। इसलिए गोपी प्रेम की स्थापना करना ही चाहता है गुरु अपने शिष्य से, और यही बात साधकों को भी चाहिए। भरत तुम समझो राम क्या चाहते हैं, उसको प्रसन्न करने के लिए वो बात करो। भरत जी उनको प्रणाम किया, बोले आज आपने हमारी आंखें खोली, अब तक मैं अंधा था, मैं अपनी भावनाओं के लिए कहता था कि रामचंद्र जी लौट आए राज्य ग्रहण कर, इसलिए मुझे सुख होगा अयोध्यावासी में, किंतु राम को क्या हुआ मैंने विचार नहीं किया। इसी तरह से आप लोग भी इस विषय को समझिए, अपनी भावना के अनुसार में भगवान का भजन तो करते हैं किंतु प्रभु क्या चाहते हैं, इसी का नाम वैराग्य है, इसी का नाम विगत राग है। यदि यह हो गया जीवन में तो जीवन सफल हो जाएगा, नहीं तो कोटि करोड़ जन्म तक सफल नहीं होगा। भरत जी रामचंद्र जी के सामने आए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, भैया मैंने फूल बुझा, मेरी आंखें अब खुल गई और मैं चाहता हूं कि आप सहज सीधे रूप से बतलाइए मुझे क्या करना चाहिए, आप कैसे प्रसन्न होंगे। रामचंद्र जी ने कहा तो महाराज जनक ने कह दिया तुम्हारी जीत हो गई, तो तुम्हारी जीत हो गई, मैंने अयोध्या का राज्य भार लेना स्वीकार किया और मैं आज से ही अयोध्या का राजा हूं। यही तो, अब एक बात करो हमको इसमें प्रसन्नता होगी, हमारे पिताजी ने जो आदेश दिया है उस आदेश के अनुसार में मैं तुमको अपना प्रतिनिधि बनाता हूं, मैं राजा हूं और तुम अब प्रतिनिधि हो, प्रतिनिधि होकर के अयोध्या लौट जाओ और वहां पर राज्य का शासन भार तुम देते थे, राजा मैं हूं, मेरे प्रतिनिधि रूप में उसकी रक्षा। एक मंत्री के प्रतिनिधि के, और भरत जी बोले बहुत ठीक, किंतु मैं आपको चाहता हूं कि आप भी चलें, तो आप नहीं चलते हैं तो अपनी पादुका अपनी प्रतिनिधि दीजिए, मैं प्रतिनिधि नहीं मैं सेवक हूं, आपका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, आपका खड़ा हूं। इसलिए उन्होंने मांगा, उन्होंने दिया सिर पर रख करके और राम राम कहते हुए अयोध्या में लौट आए। इसलिए भक्ति क्या है समझिए, हमारा इष्ट देव क्या चाहता है, पहले गुरु से आरंभ कीजिए, हमारा गुरु क्या चाहता है, सदगुरु होगा यही चाहेगा कि तुम अपना तन मन धन सब कुछ तन मन अपना दे दो, मैं उसे शुद्ध करके राजा कृष्ण के चरणों में लगा, तुम नहीं लगा सकते। और जब मैं जैसा कहता हूं निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन करो, कलयुग केवल नाम आधार, इसलिए नाम में सारी शक्तियां भगवान ने भर दी है। सवेरे शाम को एक बार की यदि नाम किया तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। इस तरह से ये भागवत के अंत में कहा गया, यहां पर दशम द्वादश स्कंद समाप्त हुआ, अंतिम श्लोक इसी से सुखदेव गोस्वामी ने समाप्त नाम संकीर्तनम जस सब पाप प्रणाशनम प्रणाम सब दुख शमनम तम नमामि हरि। उस परम हरि को जो जगत का आकर्षण करने वाले हैं, हरि माने हरण करने वाले, जो हमारे देहात्म बुद्धि को दूर करके कृष्ण प्रेम को देने वाले हैं, ऐसे हरि का यदि संकीर्तन हो, भगवान की लीला कथाएं हो, ये अमृत के समान है, उनको जगत से उद्धार कर देती हैं और उसका जीवन सुखी हो जाता है। इसलिए मैं उस परम हरि को, मैं भी आज उसी परम ब्रह्म हरि कृष्ण का को प्रणाम करता हूँ और यही कीर्तन कर रहा हूँ। आप सब लोगों का कल्याण हो, शुद्ध भगवत भक्ति आपको, तो यही करते आज का वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ और कल ठीक समय पर अपने और इष्ट मित्रों को लाएंगे, जिसे कि भक्ति रहस्य